ओम शांति। इस मार्ग पर चलते चलते, मार्ग तो बहुत ही ऊंचा है, मीठा है, पर चलते चलते अनेक विघ्न आते हैं और उस विघ्न को पार करने की विधि बाबा भी मुरलियों में बार बार बताते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा ऐसा होता है जब भी विघ्न आता है तो मुंझ जाते हैं कैसे पार करें। तो विघ्नों को पार करते हुए आगे बढ़कर मंजिल को पाना, यह हम सभी का ध्येय है। उस ध्येय को कैसे पूरा करें ये समझाने के लिए हम सभी के समक्ष आए हैं आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी। आपका विषय है विघ्नों को, विघ्नों पर विजय कैसे प्राप्त करें। सविता बहन जी ने दिल्ली से ज्ञान प्राप्त किया, 10 साल से मधुबन में सेवाएं दे रहे हैं। एक डॉक्टर होने के कारण आप पांडव भवन डिस्पेंसरी में सेवाएं देते रहते हैं, कुछ समय ग्लोबल हॉस्पिटल में भी सेवाएं दी। पूज्य प्रकाशमणि दादी जी की सेवा का भाग्य आपको प्राप्त हुआ। दादी जी की सेवा में सदा तत्पर रहते थे। महिला विंग की हेडक्वार्टर के आप कोऑर्डिनेटर हैं। मुख्यालय में जो राज्यों कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी आप सेवाएं देते हैं और हर ब्राह्मणों को बहुत अच्छी रीति तन की मन की सेवाएं देते हैं और बाबा के हर टर्न में सीजन में आपकी एक क्लास जरूर जरूर होती ही है जो हम सभी को अनेक बातों से लाभान्वित करती है। आदरणीय सविता बहन जी, विषय है विघ्नों पर विजय कैसे प्राप्त करें।
ओम शांति। जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ज्ञान में चलना शुरू करते हैं, तो ऐसे है जैसे विघ्नों का आह्वान करते हैं, क्योंकि हम माया को चैलेंज करते हैं। और जैसे ही माया को चैलेंज करते हैं तो माया भी अपना रूप दिखाना शुरू करती है। यज्ञ में शुरू से हमने देखा है, दादियों से हम सुनते आए हैं कि जैसे ही ओम मंडली बनी तब से ही विघ्न शुरू हुए। लेकिन दादियों ने बाबा के प्यार में, लगन में, निश्चय से, हिम्मत से उन विघ्नों को बहुत सहज रीति पार किया। या ऐसे कहेंगे कि उनको विघ्न जैसे विघ्न महसूस ही नहीं हुए, इतना निश्चय और नशे का बल था कि कैसी भी बातें सामने आई वो जैसे तोहफे की तरह हो गई और ही आगे बढ़ाने का साधन बन गए। तो बाबा भी हमें कई बार कहते हैं कि तूफान को तूफान नहीं समझो, तूफान को तोहफा समझो। तूफान समझेंगे तो दुखी होंगे और तोहफा समझेंगे तो अगर किसी को तोहफा मिलता है तो खुशी होती है, चाहे वो छोटा ही तोहफा क्यों ना हो, लेकिन कोई भी गिफ्ट हमें खुशी देने वाली होती है। तो जैसे ही धारणा के विषय में हमें क्लास कराई जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, खान पान की शुद्धि होनी चाहिए, हर दिन मुरली सुनना है, तो अगर पति पत्नी दोनों ज्ञान में आते हैं तब तो ठीक है, और अगर दोनों ज्ञान में नहीं चलते हैं, एक ज्ञान में चलता है, तो उस दिन से ही पेपर शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो बाबा से बहुत प्यार का, लगन का अनुभव होता है और उस प्यार और लगन में ये बातें हमें बहुत छोटी लगती हैं। हम सभी अनुभवी हैं, जो भी ब्राह्मण बनते हैं सबको इस बात का अनुभव है और हरेक इस बात को पार करता ही है। ये पेपर तो हरेक को पार करना ही होता है, तो उस लगन में हम उसे सहज पार कर जाते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ ज्ञान लिया है और बाबा से वो प्यार और लगन नहीं है, तो थोड़े समय में वो बातें हमें बड़ी लगने लगती हैं और हमें लगता है कि हम कहाँ आ गए, ये तो हर बात में मुश्किल आ रही है। पहले ही हमारा जीवन ज्यादा अच्छा था, पहले ही ज्यादा सुख शांति थी, अब तो बात बात में घर में अशांति होती है और फिर परिणाम होता है कि ज्ञान छोड़ देते हैं। तो बाबा के प्यार में विघ्नों को पार करना आसान है। दुनिया में भी ऐसे होता है, लौकिक में भी अगर किसी को किसी से प्यार होता है तो फिर वो हजार मुसीबतों को पार करके भी उनके साथ रहते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति है बाबा के प्यार में। जो भी पेपर आते हैं, जो भी बातें आती हैं, वो हमें अनुभवी बनाती हैं। हमने खुद अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया। हम जब ज्ञान में चले, मैं जब पढ़ रही थी उस समय मैंने कोर्स किया था, हमारे पिताजी ज्ञान में चले थे लेकिन थोड़ा समय चल करके उन्होंने ज्ञान छोड़ दिया। ये उस समय की बात है जब कहते थे 76 में विनाश हो जाएगा, और 76 में विनाश नहीं हुआ तो उन्होंने ज्ञान छोड़ दिया। बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन बाद में जब कॉलेज में पढ़ने के लिए आए, कोर्स किया, बाबा के प्यार का अनुभव किया, वो लगन महसूस हुई बाबा से, और हमारे माता पिता को पता चला कि ये पढ़ने गए हैं, क्योंकि हम दूसरे शहर में पढ़ने आए थे, हॉस्टल में पढ़ते थे, तो उन्होंने हमको रोकना शुरू किया कि आपको उधर नहीं जाना है, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। हमने सुना और जो हमें करना था वो हम करते रहे क्योंकि हम दूसरे शहर में रहते थे। फिर एक दो साल के बाद उन्होंने हमारे सामने, जब छुट्टियों में मैं घर में थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी शादी की बात चल रही है और आपको निर्णय देना है। तो हमने कहा कि नहीं, मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना है, तब तक मैं बाबा से जो मुझे अनुभव हुए थे उसके आधार पर मैं निश्चय कर चुकी थी कि मुझे यही जीवन जीना है। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना, इतना नाराज हुए हमारे पिताजी कि हमें दूसरे दिन ही घर छोड़ करके वापस आना पड़ा, और लगभग एक वर्ष तक वो हमसे काफी नाराज रहे। और इस बीच में बाबा की सीजन चल रही थी और बहन को जब हमने बताया तो उन्होंने कहा कि आप चलो, बाबा से आपको मिलवा देंगे। तो बाबा से मिलने आए, और उस समय बाबा पर्सनल मिलते थे, आजकल तो बाबा नहीं मिलते हैं पर्सनल काफी वर्षों से, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि एक एक बाबा के सामने जाते थे और बाबा हर एक को वरदान देते थे कुछ ना कुछ। तो मैं बाबा के सामने आई तो बाबा ने मुझे कहा कि जहां लगन है वहां विघ्न ठहर नहीं सकता, और जहां हिम्मत है वहां विघ्न ऐसे होते हैं जैसे मक्खन से बाल। मक्खन से बाल निकालने में मेहनत लगती है क्या? और बाबा के वो शब्द कहना और उसके बाद हमें वो बात कभी महसूस ही नहीं हुई, और कभी भी उसके बाद हमें हमारे पिताजी का सामना नहीं करना पड़ा। कैसे वो अपने आप धीरे धीरे राजी हो गए, और न सिर्फ राजी हुए, जब हम बाबा के यहाँ समर्पित हुए और यहाँ रहने लगे तो वो खुद यहाँ आए और ज्ञान में चलने लगे, और धीरे धीरे सारा परिवार ज्ञान में आ गया। और न सिर्फ हम समर्पित हुए, हमारे पीछे हमारी दो बहनें और भी समर्पित हुई जो बाबा के कार्य में सेवा दे रही हैं। तो जब भी हम इतने लगन से बाबा के कार्य में आगे बढ़ते हैं तो वो हमें महसूस ही नहीं हो। ये तो सिर्फ एक बात, ऐसे ब्राह्मण जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो भी कितनी बातें आती हैं। कई बार ऐसा होता है, बाबा ने हमें कहा है कि हम स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट माना, जो भी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं उसका पेपर तो होना ही है, तो वो पेपर देने की बजाय कई बार हम निराश हो जाते हैं। क्लास आगे बढ़ने के लिए पेपर होना जरूरी है, ये हम भूल जाते हैं, विस्मृति में आ जाते हैं। या हम ये भी समझते हैं कि हम योद्धा हैं, युद्ध के मैदान में हैं, माया से हमारी युद्ध है और जो ज्ञान है वो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, उसे हमें प्रयोग करना है, लेकिन समय पर हम उसे प्रयोग करना भूल जाते हैं। तो जब परिस्थिति आती है तो अगर युद्ध के मैदान में युद्ध के समय सैनिक अपने शस्त्र को यूज करना भूल जाए तो क्या होगा? युद्ध हार जाएगा। तो हम भी जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मिले हुए हैं हमें उन्हें यूज करना समय पर भूल जाते हैं और फिर प्रश्नों में बुद्धि चली जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कब तक होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो बाबा हमेशा कहते हैं अगर हम क्यों क्या में चले जाते हैं, व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, तो बाबा से भी जो हमारी लाइन योग की लाइन है वो हमारी टूट जाती है, हमें शक्तियां मिलनी बंद हो जाती हैं और विघ्न और परिस्थिति हमें बड़ी लगती है। तो सिर्फ ज्ञान की विस्मृति से ये स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने ससुराल गया और वहां ससुराल वालों ने उससे बहुत अच्छी खिचड़ी खिलाई जो उसने पहले कभी नहीं खाई थी और उसको पता भी नहीं था। तो उसने पूछा उनको ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये खिचड़ी है। तो उसने कहा बहुत अच्छी है। फिर वो ससुराल से वापस घर जाने के लिए निकला तो उसने सोचा कि मेरी पत्नी पूछेगी आपने क्या खाया, तो बहुत उसने याद किया क्या बोला था उन्होंने। तो खिचड़ी तो उसे याद नहीं आया, उसे खाचड़ी याद आया। तो थोड़ा आगे चला तो वहां खेत में से गुजर रहा था वो, तो किसान ने सुना कि ये बोल रहा है खाचड़ी, मतलब सोचा मैं भूल नहीं जाऊं, तो वो बोलते हुए जा रहा था खाचड़ी खाचड़ी। तो उसने कहा ये खाचड़ी बोल रहा है, मेरे खेत को चिड़िया खा जाए। तो उसने उसको रोका और पूछा क्या बोल रहे हो, तो उसने कहा खाचड़ी बोल रहा हूं। तो उसने कहा खाचड़ी क्यों बोल रहे हो, तो बोला क्या बोलना है, तो बोला खाचड़ी नहीं उड़चिड़ी, मेरे खेत से चिड़िया उड़ जाए। तो उसने उड़चिड़ी बोलना शुरू किया, भुलक्कड़ था वो इसलिए उसको पता ही नहीं चला। फिर थोड़ा आगे गया तो वहां पे एक शिकारी शिकार कर रहा था और वो पेड़ पे निशाना लगा के बैठा था। तो जैसे उसने सुना कि ये बोल रहा है उड़चिड़ी उड़चिड़ी, उसने उसको रोका, उसने कहा क्या बोल रहे हो तुम, उसने कहा उड़चिड़ी बोल रहा हूं। तो उड़चिड़ी क्यों बोल रहे हो, चिड़िया उड़ जाएगी तो मैं शिकार क्या करूंगा। तो उसने कहा मैं क्या बोलूं, कि तुम बोलो आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। तो उसने ये रटना शुरू कर दिया आते जाओ फंसते जाओ। थोड़ी दूर आगे गया तो चोर गुजर रहे थे उस रास्ते से और जैसे उन्होंने सुना कि ये बोल रहा है आते जाओ फंसते जाओ, क्या बोल रहा है ये, तो उन्होंने उसकी पिटाई करी कि हमको फंसाना चाहता है। तो उसने कहा मुझे क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा तुम ये क्यों बोल रहे हो आते जाओ फंसते जाओ। तो उसने कहा अच्छा क्या बोलूं, तो उसने कहा ऐसे बोलो ऐसा दिन किसी पर ना आए। तो उसने याद कर लिया ऐसा दिन किसी पर ना आए और वो आगे बढ़ा और ये बोलते हुए जा रहा था ऐसा दिन किसी पर ना आए। तब तक उसका गांव आ गया था, नजदीक के गांव में रहता था वो। तो वहां एक बारात जा रही थी, शादी हो रही थी और उसने बोला ऐसा दिन किसी पर ना आए। तो शादी वालों ने सोचा ये क्या बोल रहा है, अशुभ बोल रहा है, उसको मारना शुरू किया। फिर उसने पूछा मेरे को क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा दिन किसी पर ना आए। तो उसने कहा अच्छा क्या बोलूं, बोला ऐसे बोलो ऐसा दिन बार बार आए। तो एक छोटी सी भूल, हाँ, उसको कितनी बार मुश्किल में फंसा दिया उसने। तो हम तो ज्ञान को कितनी बार भूलते हैं और समस्याओं का आह्वान करते हैं, कहते हैं तो चलते चलते हम अपनी मंजिल को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। और जब हम सर्वगुण संपन्न बनने के, बाप समान बनने के लक्ष्य को भूल जाते हैं, तो हमारा मन छोटी छोटी गलियों में, साइड सीन्स में जाने लगता है। हम इसको उसको देखने लगते हैं, ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते, बुद्धि में विस्मृति होती है, स्मृति स्वरूप की स्थिति से जब नीचे आ जाते हैं और दूसरों को देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो तुलना करने से हमेशा हमें निराशा ही होगी, हीन भावना ही आएगी, या ईर्ष्या द्वेष की भावना पैदा होगी, या नफरत भी। अगर ज्यादा कमियां देखी किसी की तो नफरत भी हो सकती है, अगर अपनी विशेषताएं ज्यादा दिखाई दी तो अभिमान भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दूसरों को देखने से हम अपने लिए विघ्न पैदा कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपने पार्ट को देखना है, इस ड्रामा में जो पार्ट मुझे मिला हुआ है या जो भी भाग्य मुझे मिला है उसे मुझे बेस्ट प्ले करना है ना, उसमें ही मुझे हीरो एक्टर बनना है। दूसरों को देखने से दूसरों का भाग्य मुझे नहीं मिल जाने वाला है या मेरा भाग्य उनको नहीं मिल जाने वाला है। इस ड्रामा के राज को समझकर जब हम चलते हैं और अपने लक्ष्य पर ही अपनी नजर रखते हैं, जैसे अर्जुन के लिए बताया कि अर्जुन क्यों विजयी होता था, हर बार उसका निशाना सिर्फ लक्ष्य पर होता था और इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ था। तो मेरा निशाना कोई भी पार्ट बजाते हुए मेरे लक्ष्य पर ही होना चाहिए। मानो किसी ने मेरा अपमान कर दिया, होता ही है, कोई बात किसी ने मुझे कह दी, बहुत बुरी लग गई मुझे, तो क्या दूसरे के अपमान करने से मेरा अपमान हो गया? बाबा ने मुझे क्या सिखाया है? मुझे स्वमान में रहना है, स्वयं भगवान ने मुझे इतना श्रेष्ठ मान दिया है, इतना ऊंचा स्थान दिया है, तो किसी आत्मा के मान अपमान का असर मेरे ऊपर अगर अभी भी होता है तो इसका मतलब मेरे स्वमान की स्थिति श्रेष्ठ नहीं है। फिर लोग कहते हैं, कई बार बाबा के बच्चों के मुंह से ही सुनते हैं, मुझे ही सहन करना है क्या? कब तक? आखिर इसकी भी कोई लिमिट तो होगी, मैं ही क्यों सुनूं? या मुझे ही मरना है क्या? एक मुरली में, अभी संडे की मुरली में पीछे एक मुरली चली थी, तब ये बात बाबा ने कही थी कि ये भाषा ही किसने शुरू की है? और अगर हम सहन कर रहे हैं तो बाबा की श्रीमत अनुसार सहन करना माना शहनशाह बनना, क्योंकि बाबा की आज्ञा प्रमाण हम सहन कर रहे हैं, बाबा ने जो हमें शक्ति दी उसे हम प्रयोग कर रहे हैं, तो बाबा की दुआएं उसमें समाई हुई हैं। तो देखने में कई बार ऐसा लगता है कि मेरी तो हार हो गई, हाँ मेरी ही गलती सिद्ध हो गई, हाँ मैं तो कमजोर या जो भी, हाँ हम अगर ऐसा समझते हैं कि उस परिस्थिति में मेरा जो है कम मुझे आंका जा रहा है या मुझे ही गलत सिद्ध किया जा रहा है, तो भले ही उनके सामने मेरी हार है पर अगर मैंने उसको सहन कर लिया तो बाबा के दिल में मेरी जीत है, और अगर बाबा के दिल में मेरी जीत है तो मेरे नंबर जमा होते हैं, और यहां मैं हारती हूं और बाबा के गले का हार बनती हूं, तो कौन सी प्राप्ति ज्यादा बड़ी है? तो अगर मैंने इस बाबा की श्रीमत को याद रखा तो मेरे लिए सहन करना बड़ी बात नहीं है। परिस्थितियां तो आएंगी, बाबा ने शुरू से ही कहा है कि विघ्न आने ही हैं और हमें विघ्नों को पास करना ही है। तो जितना हम स्वमान की स्मृति में रहेंगे, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में रहेंगे, वो शक्ति बाबा से हमें मिलती रहेगी, जो बाबा से हमारा कनेक्शन होगा, और उस शक्ति के आधार पर जो ऊंची स्थिति का हम अनुभव करेंगे, उस ऊंची स्थिति से बड़ी बातें भी छोटी लगेंगी। नहीं तो हम सोचते बहुत ज्यादा हैं, किसी भी बात के चिंतन में अगर हम ज्यादा चले गए, मानो कोई भी बात आती है और उसके चिंतन में हम चले जाते हैं, तो हम राई को भी पहाड़ बना लेते हैं। बात छोटी सी होती है लेकिन उसको मैंने इतने बड़े रूप में देखना शुरू कर दिया। लेकिन ऊंची स्थिति में है तो जैसे एरोप्लेन ऊंचाई पर उड़ता है तो नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई देती हैं। हाँ, मकान भी जैसे ऊपर से देखो तो डब्बे जैसे दिखाई देते हैं। ऊंची स्थिति से किसी भी बात को देखा तो पहाड़ भी राई जैसा अनुभव होगा, बात एकदम जैसे छोटी लगेगी क्योंकि मेरी स्थिति इतनी श्रेष्ठ है। बाबा ने समझाया है कि आने वाला जो अंतिम समय होगा उसमें चार तरह की बातें अति के रूप में आ सकती हैं। अपने ही संस्कार, जो हम समझते हैं कि मैंने अपने संस्कारों पर विजय पाली, वही संस्कार मुझे धोखा दे सकते हैं। आप सोचेंगे मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं आता है, क्रोध को मैंने बिल्कुल जीत लिया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही हमारे पुराने संस्कार। लेकिन पता चलेगा कहीं ना कहीं वो अपना रूप दिखा रहे हैं, चाहे अंश वंश में, मोटे रूप में नहीं दिखाई देते लेकिन अंश रूप में कहीं ना कहीं पता चलेगा। फिर दूसरों के साथ जो संस्कार हैं वो हमारे टक्कर खा जाते हैं, और अगर दूसरों के साथ टकराव होता है तो हमारी स्थिति में वो विघ्न रूप बन जाता है। तीसरे, प्रकृति की तरफ से हमें पेपर आ सकते हैं, प्रकृति की परिस्थितियां ही मन की स्थिति में उतार चढ़ाव ला सकती हैं। चौथा, वातावरण, और पांचवा, इविल सोल्स। अंत समय में बाबा कहता है क्योंकि अकाल मृत्यु का समय है और एक साथ बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो फिर उन इविल सोल्स का प्रभाव भी वातावरण में हो सकता है। तो यदि हमारी स्थिति शक्तिशाली नहीं है तो उसका भी प्रभाव आ सकता है, तो उसके लिए हमें अभी से तैयार होना है। बहुत काल का अभ्यास अगर हमारा है तभी हम अंत समय के कोई भी विघ्न में, पेपर में सहज पास हो जाएंगे। तो ये याद रखते हुए, बाबा मेरे साथ है और जब सर्वशक्तिमान स्वयं मेरे साथ है, जैसे कहते हैं किसी के साथ अगर कोई बहादुर साथ में होता है तो वो साथ में है तो परिस्थिति में निर्भय रहते हैं। कोई किसी को बॉडीगार्ड मिलते हैं ना, जैसे मिनिस्टर्स को बॉडीगार्ड मिलते हैं, या किसी को भी अगर उसके साथ कोई गनमैन वगैरह होता है तो वो बिल्कुल निर्भय रहते हैं, उनको पता है कि कोई मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इंसान को भी अगर प्रोटेक्शन मिलता है किसी व्यक्ति से तो भी वो निर्भय हो जाता है। तो हमें रक्षा करने वाला हमारा साथी श्री बाबा स्वयं है। बाबा खुद कहता है अपनी सब चिंताएं मुझे दे दो। तो जब स्वयं भगवान हमें ऑफर कर रहा है तो हम सदा उसके साथ को यूज करें और महसूस करें कि हर परिस्थिति में बाबा हमें विजयी दिलाने वाला है, मैं विजयी आत्मा हूं और कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। तो इसी विषय को लेकर हम आधा घंटा योग अनुभूति करेंगे। तो आप सभी सीधे होकर बैठे, या मैं समझती हूँ एक बार सभी खड़े हो जाएं ताकि थोड़ा बहुत जो समय का प्रभाव है, इतने लंबे समय से बैठे हैं तो थोड़ा अलर्ट होके योग में बैठेंगे। थोड़ा अपने हाथ स्ट्रेच कर सकते हैं, हाथ ऊंचे कर लीजिए एक बार, अभी बैठ जाइए। सभी माताएं बैठ जाएंगे। ओम शांति। मैं आत्मा इस देह और देह के संबंध के बंधन से दूर स्वयं को प्रकाश के आकार में महसूस करते हुए सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। जहाँ चारों ओर सफेद चांदनी दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, संपूर्ण शांति पवित्रता है। बाप दादा को मैं प्रकाश के आकार में मेरे ही समान फरिश्ता स्थिति में देख रही हूँ। बाबा स्नेह भरी दृष्टि से मेरा आह्वान कर रहे हैं। बाबा की असीम प्यार में मैं स्वयं को समाया हुआ महसूस कर रही हूँ। बाबा के मस्तक से कुछ आत्मा को सर्व शक्तियों की प्रकाश मिल रही है। बहुत ही न्यारा और प्यारा वन अनुभव हो रहा है। मैं अलौकिक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ।
बाबा आप ही, मेरे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, सब कुछ है। बाबा ही मेरा संसार है, माता पिता के रूप में मुझे जन्म जन्मांतर का सुख समृद्धि का वर्षा दे रहे हैं। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। मुझे परमात्मा पालना का भाग्य मिला है। शिक्षक के रूप में बाबा मुझे रोज मुरली के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। बाबा की श्रीमत मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। कलियुगी संसार में रहते हुए भी मैं कमल समान जीवन का अनुभव कर रही हूँ। बाबा मेरे साथी हैं, हर कर्म में साथ निभाकर मुझे हल्का रखते हैं। मैं किसी भी विघ्न में, परिस्थिति में महसूस करती हूँ कि बाबा मेरा साथी है, और जब सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, मेरा मददगार है, तो मेरी विजय निश्चित है। मेरी सब जिम्मेवारी और चिंताएं बाबा की हैं। मैं स्वयं को डबल लाइट महसूस करती हूँ। बाबा मेरे सतगुरु हैं, ये ब्राह्मण जीवन वरदानों से मैं पल रही हूँ। बाबा ही मेरा संसार है, आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है बाबा। अब मैं सूक्ष्म बटन से पार परम धाम में स्वयं को अपने अनादि स्वरूप में प्रकाश पुंज के रूप में महसूस कर रही हूँ। मेरा अनादि स्वरूप सत्व प्रधान संपूर्ण पवित्र सभी गुणों से संपन्न निराकारी स्वरूप है। बाबा परम ज्योति बिंदु जिनके चारों ओर दिव्य तेजो में आभा मंडल है, परम धाम में दिव्यता अलौकिकता और पवित्रता की आभा फैली हुई है। मैं आत्मा श्री बाबा के सानिध्य में सर्व सुखों का अनुभव कर रही हूँ। प्रभा के प्रकाश में मैं स्वयं को समाया हुआ महसूस कर रही हूँ। स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ स्थिति में अनुभव कर रही हूँ। बाबा मेरे द्वारा समस्त विश्व की आत्माओं को शांति की शक्ति की प्रकाश दे रहे हैं। सभी आत्माओं के प्रति मेरी शुभ भावना शुभ कामना है। सभी को बाबा से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिले। सभी का कल्याण हो। बाबा के साथ फरिश्ता स्वरूप में मैं विश्व की आत्माओं की मनसा सेवा कर रही हूँ। प्रकृति के पांच तत्वों को भी हमें सत्व प्रधान बनाना है। अपने शुद्ध पवित्र स्थिति द्वारा मैं प्रकृति के तत्वों को जल पृथ्वी वायु सभी को पवित्रता की प्रकाश दे रही हूँ। मेरा ये शरीर भी प्रकृति के पंच तत्वों से बना है। अपनी समस्त कर्मेंद्रियों को भी मैं पवित्रता के वाइब्रेशन दे रही हूँ। कुछ समय अपने को महसूस करें कि हम बाबा के साथ विश्व की आत्माओं के मनसा सकाश द्वारा सेवा कर रहे हैं। आज अनेक आत्माएं इस संसार में दुखी हैं, रोगी हैं, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं। उन सभी को बाबा के द्वारा अपने दुखों से राहत मिले, जीवन में शांति का अनुभव हो, खुशी मिले, अनेक भक्त आत्माएं बाबा को पुकार रही हैं। उन सभी को परमात्मा संदेश मिले, सही मंजिल मिले, मैं कुटों में कोई में भी कोई बाबा की चुनी हुई विशेष आत्मा है। बाबा के कार्य में मददगार विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी मैं आत्मा हूँ।